और ये स्थान कहा जाता है, ये एरिया सेवा कुंज, जो आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु है, ये जो स्थान है। तो ये स्थान और यहाँ के जो विग्रह हैं, जिनका नाम है श्री श्री राधा दामोदर, तो अल्टर में कई विग्रह आपने देखे हैं। एक तो है राधा वृंदावन चंद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हैं, और भूगर्म गोस्वामी के राधा छैल चिकन हैं, जयदेव गोस्वामी के राधा माधव हैं, और शिल जीव गोस्वामी के राधा दामोदर हैं। तो ये स्थान है जहाँ ये सारे जो छह गोस्वामी हैं यहाँ मिलते थे, और जिनका वर्णन वो क्या कार्यकलाप करते थे, श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं कि नाना शास्त्र विचार अनेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको। तो ये जो छह गोस्वामी हैं इस स्थान में मिलते थे और कई सारे शास्त्रों पर चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, और जो सार हैं उस सार को प्रस्तुत करते थे। तो ये स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक भक्त के लिए, और विशेष रूप से हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हैं इस्कॉन में। तो श्रील प्रभुपाद भी अपने प्रचार कार्य में जाने से पहले इस स्थान में प्रभुपाद ने निवास किया था, और जो गोस्वामीज हैं हम उन्होंने इस स्थान में कई ग्रंथ भी लिखे, और छह गोस्वामियों के ग्रंथों का यहाँ लाइब्रेरी होता था। जो भी वो बुक्स बनाते थे तो राधा दामोदर मंदिर में सारी जो किताबें हैं उनका बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता था जीव गोस्वामी के अंडर में। और ये जो गोस्वामी हैं वो कोई सामान्य भक्त नहीं थे। गोस्वामियों के जीवन से हम देखते हैं, हाँ, श्रीनिवास आचार्य कहते हैं त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, वो मंडलपति थे, बहुत बड़े धनवान लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसी जो सुविधा है भौतिक, उसको त्यागा था। जिस प्रकार से तूर्णम, तूर्णम को मतलब जैसे घास को कोई वैल्यू नहीं है उसका, हम घास को फेंक देते हैं हमारे हाथ में है तो उसी प्रकार से इन्होंने सारे ऐश्वर्य को और सब चीजों को त्यागा था और इस स्थान में आए थे, इस स्थान में वृंदावन आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, और चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जिनको दबीर खास और साकर मल्लिक कहा जाता था, तो ये दोनों भाई जिनके हृदय में भगवान के लिए बहुत अधिक प्रगाढ़ अनुराग था, ये दोनों भाई कई प्रकार के लेटर्स लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को नवदीप में, और सची माता भी कई बार उस लेटर्स को देखती थी, और वो लिखते थे कि हमसे ये रहा नहीं जा रहा है, हम इस प्रकार के कार्य में नहीं लगेंगे, हमें मुक्त करो। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से उनको लेटर लिखते थे, और उस अपने लेटर में चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक श्लोक लिखा था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप लोगों को उसी प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए जिस प्रकार से एक जो स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता नहीं, एक जो स्त्री है अपने पति की सेवा बहुत अधिक कुशलता से करती है, लेकिन साथ साथ वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करती है, तो उस पति को कोई पता नहीं चलता, मतलब इतना अटेंटिव, इतना केयरफुली वो अपने पति को सर्व करती है, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही चीज का चिंता होता है, चिंतन होता है, वो प्लान बनाती है कि किस प्रकार से मेरे उस पर पति को जिससे प्रेम करती है उससे मिला जाए। तो महाप्रभु ने जैसे ये लिखा तो ये जो दोनों भाई हैं उन्होंने उसी प्रकार का आचरण अपनाया। इसका मतलब है कि चाहे आप नवाब की सेवा कर रहे हो भौतिक रूप से, लेकिन आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, कृष्ण के लिए सतत चिंता में होना चाहिए, कृष्ण का सतत चिंतन होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से पहली बार वो वृंदावन के लिए और जा रहे थे, तो आते समय बंगाल से आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से फिर राम के लिए नाम के गांव में आते हैं। वहां शाम के समय में जब रात हो गई थी तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो राजा का वेश धारण करते थे, उनके कपड़े बहुत ऐश्वर्यशाली होते थे वेश, तो उनको त्याग कर सामान्य भक्त का वेश धारण करके वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए राम के लिए में। और वहां आकर उन्होंने इतनी सुंदर प्रार्थना की है कि मैं नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, आपने तो जगाई मदाई का उद्धार करने में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूँ मैं, यवन व्यक्ति का संग कर रहा हूँ, इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की है। तो फिर महाप्रभु को शाम के समय मिलने आए और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का परमिशन लिया। तो महाप्रभु को अप्रोच करना है तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही, आप देखेंगे जितने भी गोस्वामी गए हैं महाप्रभु को अप्रोच किया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे बालक थे तो हरिदास ठाकुर की सेवा करते थे, हरिदास ठाकुर उनके घर में ही एक प्रकार से रहते थे, उनके गाँव में ही। तो हरिदास ठाकुर से उनका बड़ा अनुराग था, इतने वैरागी साधु को देखकर। हरिदास ठाकुर केवल कोपिन में रहते थे और ये रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास जाकर कई प्रकार की सेवाएं करते थे और उनको लगता था कि इस व्यक्ति के अंदर कितना आनंद है, ऐसा जीवन चाहिए मुझे, आनंदमय जीवन। रघुनाथ दास गोस्वामी जब बालक तभी समझते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी हरिदास ठाकुर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से ये जो गोस्वामी हैं दोनों, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले, उस समय उनका नाम साकर मल्लिक और दबीर खास था। तो शाम के समय चैतन्य महाप्रभु ने दोनों के सर में अपने चरण रखे और उनको दीक्षा प्रदान की, मतलब उनका नाम चेंज कर दिया, एक का नाम रखा सनातन गोस्वामी और दूसरे का रूप गोस्वामी जो आगे कहलाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से महाप्रभु ने कहा कि आपका आपके लिए जो सेवा का स्थान है वो बंगाल और ओडिशा नहीं है, आपको यूपी मतलब वृंदावन जाकर आपको प्रचार करना है। तो इन दोनों भाइयों को वो शिक्षा देते हैं, एक को बनारस में एक को इलाहाबाद में, और वृंदावन की ओर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आपका जो देश है सेवा का वो है वृंदावन, वहां जाकर भगवान के लीला स्थलियों की खोज करो, शास्त्रों का मर्म को नए ग्रंथ प्रस्तुत करो और मंदिरों की स्थापना करो। इस प्रकार से चार उनको आज्ञा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये आकर कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो उस समय जब ये दोनों भाई इधर आते हैं तो इनका तीसरा भाई भी इनके साथ आता है जिनका नाम था अनुपम। हाँ, अनुपम। तो ये तीनों आते हैं तो जीव गोस्वामी उस समय घर में ही थे और बहुत छोटे से बालक थे, और जीव गोस्वामी के हृदय में जब वो छोटे थे तब उनके पास कृष्ण बलराम के विग्रह होते थे जीव गोस्वामी के पास घर में, और जीव गोस्वामी उनकी पूजा अर्चना करते थे और हर समय अपनी माँ को पूछते थे, क्योंकि उनके पिता भी इधर वृंदावन आए थे रूप और सनातन के साथ अनुपम। तो फिर जीव गोस्वामी अपने माँ को पूछा करते थे कि ये मेरे जो चाचा जी हैं, अंकल ना, दो अंकल थे उनके रूप और सनातन, ये कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो उनकी माँ कहती थी कि वो दोनों वृंदावन में हैं और वो बहुत महान भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने भागवतम भी और कई ग्रंथों पे टीका लिखी है, कई ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। तो ये सुनकर जीव गोस्वामी को बहुत हृदय में प्रेरणा होती थी कि कब मैं जाऊं मेरे दो अंकल के पास, कब मैं वृंदावन चला जाऊं। तो एक दिन उनके जो कृष्ण बलराम विग्रह थे वो जब उनकी पूजा कर रहे थे जीव गोस्वामी, तो अचानक वो दो परिवर्तित हो जाते हैं, उनके सामने गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में प्रकट हो जाते हैं। तो जीव गोस्वामी को आश्चर्य होता है गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को देखकर। तो फिर जीव गोस्वामी अपना घर त्याग देते हैं जब वो युवा अवस्था में थे, और इनके संग के लिए उनके हृदय में बहुत अधिक ईगरनेस था। और फिर वृंदावन आने से पहले जीव गोस्वामी नवदीप जाते हैं और नवदेव की जो पहली परिक्रमा है महाप्रभु के लीला स्थलियों की, वो नित्यानंद प्रभु उनको स्वयं ले जाते हैं और सारे लीला स्थलियों के महात्म्य को बताते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद वो इधर आते हैं वृंदावन। अब वृंदावन आकर अपने दो अंकल्स का चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उनमें से रूप गोस्वामी से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। जीव गोस्वामी के जो गुरुदेव हैं वो रूप गोस्वामी है, और रूप गोस्वामी के लिए वो पर्सनल कई प्रकार की सेवा करते थे, उनके चरणों का मसाज करते थे। रूप गोस्वामी को किताबें लिखने के लिए जो पेपर चाहिए होता था, पेपर मतलब पत्ते ताल पत्र पर, हाँ पाल्म लीव्स होती थी, तो ये खुद जाते थे इस एरिया में कलेक्ट करते थे और वो लाके जीव गोस्वामी को देते थे। उनके लिए रोज पानी भरना, जीव गोस्वामी की पूजा में जो पैराफेनेलिया है घंटी और कई सारी चीजों को अरेंज करना, उनको सफाई करना, और जीव गोस्वामी जो भी ग्रंथ लिखते थे रूप गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी उसकी एडिटिंग करते थे, एडिटिंग का कार्य करते थे, क्योंकि जीव गोस्वामी बहुत अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने कई लाख श्लोकों की रचना की थी, 4.5 लाख, और लेकिन जीव गोस्वामी जब अपना ग्रंथ लिखते थे उसको एडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। और ऐसा वो जैसे अभी चल रहे हैं तो मन में कई हजारों श्लोकों की रचना करते थे और फिर जाके धड़धड़ लिख डालते थे बैठते ही, तो उनको फिर से एडिट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो जीव गोस्वामी इतने अधिक बुद्धिमान पर्सनैलिटी थे इन गोस्वामियों में, जो शास्त्रीय दृष्टि और बहुत अधिक विनम्र थे, तो इनके हृदय में बहुत अनुराग उत्पन्न हुआ कि मुझे भगवान के विग्रह की वर्शिप करना है, पूजा करना है। तो उनके गुरुदेव रूप गोस्वामी ने ये जाना उनके शिष्य के हृदय की इच्छा, तो फिर रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से ये जो राधा दामोदर विग्रह है उनको बनाया अपने हाथ से, और फिर इनको दे दिया जीव गोस्वामी को 1542 में। तो जीव गोस्वामी तब उनकी सेवा करने लगे, और जीव गोस्वामी कई प्रकार से सेवा करते थे, और ये दामोदर राधा दामोदर उनसे बात करते थे, जीव गोस्वामी से बोलते थे रोज कि मैं अभी भूख लग रही है मुझे, या फिर मुझे भोगा ऑफर करो। तो इस प्रकार से उनसे वार्तालाप और उनसे सेवा भगवान स्वयं स्वीकार करते थे। और कई बार जीव गोस्वामी नजदीक नहीं होते थे तो राधा दामोदर जी अपना फ्लूट बजाते थे उनको बुलाने के लिए, बांसुरी, और फिर जीव गोस्वामी दौड़ते हुए उनके सामने आके उनको देखते रहते थे बांसुरी बजाते हुए। कभी मूर्छित हो जाते थे तो फिर उनको जो आवश्यकता है उनकी वो सेवा करते थे। भगवान दामोदर के इतने अधिक वो प्रिय थे जीव गोस्वामी। तो ये दामोदर का मतलब ही है कि जो प्रेम से बंध जाते हैं। तो अब देखेंगे कि ये जो जगह है ये जीव गोस्वामी ने स्वतः खरीदी है, तो जो जगह का कागजात होता है वो आज भी है, वो हम जहाँ रह रहे हैं उसके पास जो वृंदावन शोध संस्थान है, तो उसमें एक दिन मैं गया था तो वहां देखा कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की हैंड राइटिंग की किताबें हैं, उन्होंने जगह जो खरीदी उसके पेपर्स हैं, जो संग्रहालय म्यूजियम है वो जहाँ लगाए हुए हैं कई ग्रंथों को इन गोस्वामियों के पर्सनल हैंड राइटिंग को। तो क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा लाइब्रेरी था काफी साल पहले भी, लेकिन वो कई सारे गायब हो गए, और आज भी जीव गोस्वामी ने जो षड़ संदर्भ नाम का ग्रंथ लिखा है वो भी आप इस्कॉन के महेश्वरी के थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक वैष्णव के घर में आज भी वो ग्रंथ है, जो साधुओं को केवल वो दर्शन कराते हैं। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, और रूप और सनातन के बाद इस गौड़िया संप्रदाय के भी प्रमुख आचार्य रहे, और उन्होंने गोस्वामियों के ग्रंथों को नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य के द्वारा बंगाल और ओडिशा में उन्होंने प्रचार करवाया। तो यहाँ कई चीजें हैं, एक तो है सनातन गोस्वामी के शालिग्राम शिला, गिरिराज शिला है जिनका आपने दर्शन किया। तो सनातन गोस्वामी ऐसे वैष्णव थे कि रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे पैदल, गाड़ी से नहीं, हाँ पूरा इतना परिक्रमा करते थे रोज, और वो जब बूढ़े हो गए थे तब तक ये उनका नियम था। लेकिन एक दिन देखा कि कृष्ण ने देखा मेरे भक्त इतना मेरे लिए प्रयास कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, तो कृष्ण अचानक प्रकट हो जाते हैं और उनको ये एक पत्थर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, तो पत्थर पिघल जाता है। तो फिर कृष्ण कहते कि हे सनातन, हाँ ये ले लो तुम ये गिरिराज शिला, और ये तुम ले जाओ और इसकी चार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज की परिक्रमा करने का ही जो फल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उस गिरिराज शिला को यहाँ लाया, राधा दामोदर मंदिर में रखा और फिर यहाँ वो परिक्रमा करते थे। तो सनातन गोस्वामी अद्भुत पर्सनालिटी है। हम राधा मदन मोहन के मंदिर में गए थे सुबह, तो सनातन गोस्वामी का संग शिवजी भी चाहते थे। नरोत्तम संग रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो उसी प्रकार से भगवान शिव भी ऐसे वैष्णव का संग चाहते थे सनातन गोस्वामी जैसे, क्योंकि सनातन गोस्वामी गिरिराज के भी तलहटी में रहते थे मानसी गंगा के वहां, तो वहां चकलेश्वर महादेव है। बद्रनाथ ने चार महादेवों की स्थापना की थी, उसमें से एक चकलेश्वर महादेव। तो जब ये वहां रहते थे भजन करते थे सनातन गोस्वामी, तो वहां बहुत अधिक मच्छर हो गए थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे इस एरिया में नहीं रहना है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। यहाँ वो गिरिराज गोवर्धन स्थान था वृंदावन, तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन शिवजी उनके संग से अलग नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या समस्या क्या है आपकी बताओ मुझे, तो ये मच्छर का कारण बताते हैं। कहते कि आज से इस एरिया में मच्छर नहीं होंगे, तो तब से अभी भी मच्छर नहीं है वहाँ, मानसी गंगा के वहां जाते हो तो वो मच्छर रहित स्थान है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी इतने अद्भुत और प्रेमी भक्त हैं। तो सनातन गोस्वामी को संबंध आचार्य कहा जाता है, जो संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं अपने दो ग्रंथों में, एक है हरि भक्ति विलास और एक है बृहद भागवतामृत। तो सनातन गोस्वामी का और भी एक छोटी सी लीला हम सुनते हैं कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी का जो आकर्षण है भगवान के दिव्य नामों के प्रति कितना अधिक प्रगाढ़ था। उन्होंने भगवान के नामों को अपना धन बना लिया था। नाम बिना अन्य किछु धन नहीं रे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम के बिना सर्वश्रेष्ठ कोई धन नहीं है। तो जब एक काशी में एक पति पत्नी रहते थे, उनको अपने लड़की की शादी करनी थी, धन नहीं था उनके पास, तो उन्होंने शिवजी के पास, काशी विश्वनाथ शिवजी हैं, उनको कहा कि हमें धन कुछ करो व्यवस्था। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, वृंदावन में एक साधु है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ। तो वो आते हैं और सनातन गोस्वामी से मांगते हैं। तो सनातन गोस्वामी को कहते कि देखो वहां डस्टबिन में वो पारस पत्थर पड़ा होगा, वो ले जाओ। तो सनातन गोस्वामी से वो पारस पत्थर ले जाते हैं और वो ले जाकर घर में पत्नी के पास जाते, तो पत्नी देखती तो आश्चर्य करती है कि जिस व्यक्ति ने पारस पत्थर बंद करने के लिए नहीं है, ठीक है इसका थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं, तो थोड़े ही समय में हम खत्म करते हैं। जब सनातन गोस्वामी के पास वो व्यक्ति फिर से आता है और उनकी जो पत्नी कहती है कि जो व्यक्ति पारस पत्थर को डस्टबिन में फेंक सकता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास इससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज होनी चाहिए। तो जाते वापस सनातन गोस्वामी के पास और सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि मेरे पास इससे मूल्यवान चीज है, लेकिन पहले आपको ये जो पारस पत्थर तुम्हारे हाथ में है इसको फेंकना होगा गंगा नदी में, क्योंकि जिस टीले में रहते हिल थाना जो हम गए थे तो उधर ये कन्वर्सेशन हो रहा था, उनका ऊपर भजन कुटीर है हमने देखा नहीं, और एक कुआं भी है जहाँ भगवान ने अपने बांसुरी से एक कुआं बनाया था उनके लिए पानी पीने के लिए। तो उस व्यक्ति ने ऊपर से ही यमुना बहुत नजदीक बहती थी, ऊपर से फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या है वो मूल्यवान धन? तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के बारे में और कई लीलाएं आती हैं। तो हम फिर से राधा दामोदर मंदिर आते हैं, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने निवास किया, और प्रभुपाद इस रूम में अपना अध्ययन करते थे, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, बैक टू गॉडहेड पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए यहाँ लेख लिखते थे, और फिर जीव श्रील प्रभुपाद सामने एक उनका कमरा था, जहाँ प्रभुपाद कुकिंग करते थे और प्रसाद लेते थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जब वहाँ प्रसाद लेने का उनका वो स्थान है, और सामने एक विंडो है जहाँ सामने आप देखेंगे रूप गोस्वामी का समाधि और भजन कुटीर है, तो उनको दिखाई देता था। तो हर समय रूप गोस्वामी के बहुत करीब श्रील प्रभुपाद थे, और एक समय श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद रोज सुबह जल्दी उठ के रूप गोस्वामी के समाधि के उस एरिया को झाड़ू लगाते थे, और रोज उनका ये सेवा होता था, खुद ही करते थे। और एक दिन अचानक रूप गोस्वामी प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि भक्ति विदान स्वामी क्या करो, तुम प्रचार करो, जाकर विदेशों में सफल हो जाओगे। तो प्रभुपाद बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है रूप गोस्वामी का, और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ राधा दामोदर मंदिर में अपनी तैयारी की थी अमेरिका जाने से पहले, और फिर यहाँ का ही संदेश लेकर श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं और सब जगह कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद हैं, वो छह गोस्वामियों के सबसे प्रिय सेवक हैं। तो भागवतम के पहले स्कंद का अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने इसी स्थान में किया, राधा दामोदर के मंदिर में। तो इस प्रकार से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ कई सारे वैष्णव भी आए उसके बाद, नरोत्तम दास ठाकुर, जीव श्यामानंद प्रभु, और ये लोग यहाँ आकर जीव गोस्वामी से सीखते थे। तो जीव गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास लेते थे, और कई कई ग्रंथों की क्लास यहाँ लिया करते थे, उनको पढ़ाते थे, और ये वैष्णव बहुत अधिक आनंद का अनुभव करते थे। तो श्री श्री राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की। तब देखेंगे कि पीछे हमने जहाँ जाते पहले परिक्रमा की, वहाँ जीव गोस्वामी का समाधि है, कृष्णदास कविराज का समाधि है, और इस तरफ रूप गोस्वामी का समाधि है, और उसके बाद भूगर्भ गोस्वामी का समाधि है। तो भूगर्भ गोस्वामी मतलब जो हमेशा भूमि पृथ्वी के अंदर रह के जप करते रहते थे, भजन करते थे, इसलिए उनका नाम भूगर्भ गोस्वामी रखा है। उनके गुरु थे गदाधर पंडित, और वो सबसे करीब फ्रेंड थे लोकनाथ गोस्वामी के। तो लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन आए तो इन्होंने कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वो चैतन्य महाप्रभु को भेजते कि कहते हैं कि मुझे भी जाने दो, तो कहते कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं आज्ञा नहीं दे सकता, आप अपने गुरु गदाधर के पास जाओ और उनको पूछो। तो गदाधर पंडित से पूछते हैं तो गदाधर पंडित कहते कि आप जा सकते हो। तो ये दोनों सबसे पहले कोई वैष्णव आए गौड़िया, तो ये दोनों थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, चैतन्य महाप्रभु उस समय नवदीप में थे, तभी चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को यहाँ भेजा था, इन दो वैष्णवों को। इस प्रकार से कई और लीलाएं हैं इस स्थान की, स्पेशली इन गोस्वामियों के कई और कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन आता है कई सारे गौड़िया बायोग्राफीज में, ग्रंथों में, जो हम कभी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। और यहाँ आते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रील प्रभुपाद से और रूप गोस्वामी से, कि उनके शिक्षाओं के प्रति रूप रघुनाथ पदे आयुर्वे आकृति कबे हम भुजब से जुगल फिरती। तो रूप और रघुनाथ मतलब रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ जो छह गोस्वामी हैं, इनके प्रति कब अनुराग होगा और कब मैं श्री श्री राधा कृष्ण के आध्यात्मिक कार्यकलापों को समझ सकता हूँ। तो इस प्रकार से इनसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि मुझे आशीर्वाद दो या मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं अपने आप को बहुत जल्दी प्यूरिफाई कर लूं भौतिक अनर्थों से, और विशेष रूप से हरिनाम और वैष्णव की सेवा में मेरा अनुराग बढ़े, तो यहाँ हम जल्दी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। श्री श्रीराज दामोदर के श्रील प्रभुपाद के नेताय गौर प्रेमानंदे। तो हम चांद करेंगे हरे कृष्ण मंत्र।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे